दोनों का, फिर बाद में सॉल्व हो गया, सुलझ गया,
सही,
लेकिन
सही।
एक बार ऐसी मतलब एक मन मिटाव हो गया था।
सही, न सिर्फ ये कि रफी साहब के साथ उन्होंने गाना उन्होंने इसका स्टैंड लिया, बल्कि उन्होंने HMV जो रिकॉर्डिंग कंपनी थी उसके साथ भी गाना नहीं गाया था, और लता जी ने पूरा इसके लिए स्टैंड दिया था कि, तो इसका मकसद है कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, उस जमाने के जितने फनकार थे, आने वाले दशकों के भी जो फनकार
आने वाले लोगों,
उन लोगों के लिए भी उन्होंने काम किया। एक चीज मुझे अक्सर ख्याल आती है कि इस मर्दों की दुनिया में, और मैं चाहे वो हिंदुस्तान है, चाहे दुनिया का कोई, कनाडा भी है, ये दुनिया मर्द रूल करते हैं, और जहां पर भी बड़ी आसानी से औरत की तरफ उंगली उठा देते हैं, मगर लता जी की जिंदगी के, जिसे कहते हैं ना, मेरे लिहाज से कि उस खातून ने अकेले जिंदगी बसर की, मगर किसी को मजाल और जरूरत नहीं हुई कि उनके तरफ उंगली उठा सके, और वो
जी,
पूरी
जी।
इंडस्ट्री की दीदी थी, इज दैट राइट?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम मतलब अनब्लेमिश्ड लाइफ थी, फ्लॉलेस लाइफ थी, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता, भीड़ में कोई आदमी पत्थर नहीं मार सकता कि उन्होंने गलत काम किया है। वो ग्रेट लेडी थी, देवी थी, आपने जो बोला वो बिल्कुल से, मतलब गाने में भी ग्रेट थी, ग्रेटेस्ट थी, और करेक्टर भी इंसान का इतना ग्रेट है, तो मतलब एक ऐसा पैकेज डील थी कि मतलब आदमी को और क्या चाहिए इंसान को, मतलब एक आदमी
बड़ी इज्जत से, सुनील भाई बड़ी इज्जत से हिंदुस्तान के लोगों ने बड़े इज्जत के साथ उनको रुख्सत किया इस दुनिया से।
हाँ, पूरा बंबई सड़कों पर,
पूरी दुनिया ने सर जी,
पूरी दुनिया ने, बंबई क्या, कनाडा क्या, पाकिस्तान क्या, इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया।
इतना बड़ा फ्यूनरल इससे पहले हिंदुस्तान में आपने किसका देखा था?
किसी का नहीं, मैंने तो कभी किसी का देखा ही नहीं। मैंने खबरें भी, गांधी के चीता भी देखा, तो उनके भी इससे ज्यादा लोग तो नहीं होंगे।
बहुत
और कोविड ये मतलब कोविड के जमाने में लोगों ने परवाह नहीं की और आ गए सड़कों पर। लेकिन लता जी भी दुर्भाग्य की बात है, सैडनेस है, ये कोविड से गई,
वेरी सैड। मैं ये समझती हूँ कि ये वाकई गदर की बात है कि लता जी का इंतकाल जो हुआ वो भी कोविड की वजह से ही हुआ।
ये सुनील भाई, ये दिलीप साहब भी 92 एज में गए हैं?
नहीं, वो 98 कहा जाता है, लेकिन हाँ 98 में गए वो, 99 या 98।
बहुत शुक्रिया साहब। हम औरतों को जेवरात से हमेशा शौक रहा, मतलब आजकल के जमाने में तो आदमी भी जेवरात का बहुत शौक करते हैं, चाहे वो हीरे पहनने हो चाहे वो कड़े पहनने हो। कहते हैं लता जी को भी हीरों का बहुत शौक,
डायमंड पहनती थी। सबसे पहली जो उन्होंने रिंग ली थी, आप यकीन मानेंगी, सिर्फ 700 रुपीज की।
मगर बेटा 19 मेरी जान, 1950s में वो जो 700 था वो आज के मेरा ख्याल है 70 लाख के बराबर है।
70,000 तो हो गई।
आप 1950 की अगर आप बात करते हैं ना, तो उस जमाने में सोने की कीमत क्या थी? मेरा ख्याल है 100 कुछ रुपए तोला था,
60 रुपए तोला,
और इनको
60 रुपए तोला सोना था।
ये इनको कार्टियर का सामान बहुत पसंद था।
अच्छा,
कार्टियर की घड़ियां, कार्टियर के डायमंड, ये सब चीजें इनको,
और इनका क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट मैचेस देखती थी, यहाँ तक के लॉर्ड्स में इनके लिए एक गैलरी बुक होती थी लता जी के लिए,
हमेशा
रिजर्व रहती थी, और वहाँ उनका एक बंगला भी था, एक
लंदन में इनका एक बंगला था, बहुत ब्यूटीफुल लॉर्ड्स के सामने।
अच्छा,
क्योंकि हम लोगों ने इनसे पूछा भी था एक बार, कि दीदी आप जब जाती हैं वहाँ तो कौन से होटल में आपको रहना? बोला नहीं, मेरा तो खुद का घर है। उन्होंने वो तंबली बोला, आपका घर है वहाँ पे? बोला कहाँ पे घर है आपका? बोला वो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, उसके बाजू में मेरा घर है।
लता जी के क्रिकेट या क्रिकेट के शौक की ये भी वजह थी कि उनके अपने भाई भी क्रिकेट खेला करते होते थे, और वो शख्स
युवराज सिंह डूंगरपुर थे, जो जिनकी वजह से इन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने भी शादी नहीं की, वो भी क्रिकेटर थे, और क्रिकेट से बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत जबरदस्त था।
सचिन तेंदुलकर जी उनके फेवरेट क्रिकेटर थे,
तेंदुलकर उनके फेवरेट थे, अपनी फिल्म का मुहूर्त भी उनसे कराया था, लेकिन फिल्म एक आई थी इन्होंने प्रोड्यूस की थी
जी।
उसका मुहूर्त तेंदुलकर से कराया था। राज सिंह डूंगरपुर की जो फैमिली थी, इनकी मदर थी, वो बोलती थी कि फिल्म लाइन की भाई लड़की नहीं चाहिए हमको ये, तो फिर दोनों की दोस्ती रही, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की और दोनों दोस्त बन के रहे, ये बहुत कमाल की बात है।
हमने इस चीज को कल भी कवर किया था और लता जी ने क्योंकि जिम्मेदारी ली हुई थी अपने भाई बहनों की, अपनी भाई बहनों की जिम्मेदारियां ली हुई थी, इनके भाई भी क्रिकेटर थे और राज सिंह जो थे डोंगर के राजा थे, बड़ा अमीर आदमी था, इनके भाई भी क्रिकेट खेला करते थे, राज सिंह भी। और मजे की बात यह है कि दिस इज द एक्चुअल लव, दिस इज एक्चुअल लव। उन्होंने भी अपने तई शादी नहीं की, लता जी ने भी अपने तई शादी नहीं की, उनकी डेथ 2009 में हुई थी जबकि लता जी जो हैं वो अब इस साल में उन्होंने हमें जुदाई दी। तो बहरहाल लता जी को पढ़ने में कहते हैं जासूसी रिसाले पढ़ने का बहुत शौक था। अच्छा लता जी
शेरलॉक होम्स का पूरा कलेक्शन था।
अच्छा शेरलॉक होम्स
हर कहानी।
मिठाइयों में क्या पसंद करती थी?
मिठाइयों में तो वो इतनी मिठाई तो खाती नहीं थी, वो शायद अपनी सेहत के लिए।
अच्छा।
लेकिन मीठा मतलब उनको कोका कोला बहुत पसंद था, कोका कोला बहुत कोक की बहुत शौकीन थी। ऐसे सुरैया एक हमारी बहुत बड़ी सिंगिंग स्टार थी, उनको भी कोका कोला बहुत पसंद था, इनको भी था, बहुत कोक बहुत पसंद करती थी। ये नहीं कि मतलब हम हमेशा पीते रहे, मतलब जब मौका बनता था तो कोक पीते
थे। जैसे भी हमारे इन प्यारे बेटों ने, राजेश ने और सुनील ने बताया कि लता जी अचार भी खाती थी, लेमन भी खाती थी, शौक रखती थी, समोसे उनको बहुत पसंद थे, कीमे के और मटन वो कहते हैं पसंदा जो था, पसंदे उनके हाथ के पके हुए। अब मुझे ये हैरत होती है कि वो इतनी फेमस भी थी, उनके इर्द गिर्द तो नौकरों का एक
1960 में एक किस्सा हुआ था।
एक आपको किस्सा सुनाते हैं हम, इन्होंने एक कुक रखा था 1960 में, वो घर का एकदम मेंबर बन गया और बहुत करीब इन लोगों के और बिल्कुल, और ये हो गया कि वो इनको खाने में स्लो पॉइजन दे रहा था। ये पूरे मतलब हिंदुस्तान में बात है और ये तो मतलब मुल्कों में फैल गई होगी।
बिल्कुल जी, ये हमने कल कवर भी किया था। और वो कहते हैं कि 3 महीने तक, उसके बाद एक कौन आया तो 3 महीने तक वो इनके साथ रहे। खाने का वक्त होता था ना तो वो आते थे, पहला निवाला वो लिया करते थे और बाद में लता जी को खिलाया करते थे, क्योंकि इनके दिमाग पे खौफ तारी हो गया था कि मुझे जहर दिया जाए।
लता जी, आपने कभी तस्वीर देखी है कि लता जी ने कोई रंगीन किस्म की साड़ी पहनी?
लियाकत भाई, उन्होंने बहुत सादगी, मैं आपको तब तो सिंपल जिंदगी उन्होंने गुजारी,
वाइट सिंपल जिंदगी,
सिंपल जिंदगी,
लाइट कपड़े पहनते थे और सिल्क की साड़ियां पहनती थी, प्योर सिल्क की साड़ियां और लाइट साड़ियां, लाइट कलर क्रीम व्हाइट लाल बॉर्डर हो जिसका या कुछ वो इस टाइप के कपड़े, मतलब सोबर कपड़े।
बहुत शुक्रिया। ये गीत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। अनिल सुनील जी और राजेश जी, आप दोनों के शामिल होने का बहुत शुक्रिया। कुछ आखिर में आप ऐड करना चाहते हैं?
आपने हमें याद किया, ये हमारे लिए मतलब बहुत खुशी की बात है, आपने ये मौका दिया हमको
आवाज टीवी ने, और इतनी आवाज
टीवी ने, आवाज आवाज टीवी ने। और ये देखें, मैं एक चीज तो सही करना चाहता हूँ,
लियाकत साहब की बोलती बंद है आज, पता नहीं क्यों,
वो बस ये ये इनका प्रोग्राम है भाई, मैं आ जाता हूँ इस। और ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सुनील जो हैं, सुनील गौर और ये राजेश गौर ये हमारे मेहमान नहीं है आरफा जी,
इज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम,
इज पार्ट ऑफ अवर टीम,
वी आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली,
हाँ पार्ट ऑफ अवर टीम। और बहुत
राजेश और अनिल, मैं आप सुनील, मैं आपके साथ एक चीज प्रोग्राम के नाम के लिहाज से शेयर करती हूँ। बाज़ोकात हम लोगों में जब हम किसी चीज का नाम रखते हैं तो हम उस नाम की रूट को ढूंढते हैं। इस प्रोग्राम का नाम ई आवाज आज से 22 साल पहले रखा गया था।
ये बात मैंने लियाकत साहब से की थी कि इसका नाम आवाज हो सकता था, ई आवाज का मतलब
मैं बताती हूँ, ये आज 22 साल पहले तक रखा गया था। एक होता है कि मुंह उठा के किसी का नाम रख लेना, हमारे यहाँ जब आवाज तो कोई भी आवाज हो सकती है, बकरी की आवाज होती है, मेमने की आवाज हो सकती है, कोई भी आवाज हो सकती है। तो ये आवाज इसको इसलिए रखा गया था क्योंकि हम रेडियो के ऊपर थे, हम इंटरनेट के ऊपर थे, तो इलेक्ट्रॉनिक आवाज इलेक्ट्रॉनिक आवाज के लिहाज से, क्योंकि जब हम लोगों की गाड़ियों में जाते हैं, अपने भाई बहनों के घरों में जब हम शामिल होते हैं, तो इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक आवाज है, तो इसका नाम ई आवाज। फिर हमारी जब वेब आई थी तो उस वेब को ई आवाज पे हम लेके आए थे, विच शोज इलेक्ट्रॉनिक आवाज। आवाज तो गधे की भी होगी, आवाज तो बकरी की भी होगी, आवाज तो मुर्गी की भी होगी, आवाज तो घंटी की भी होगी, आवाज तो टेलीफोन की भी होगी। तो दिस इज हाउ वी नेम्ड इट, ई आवाज,
इलेक्ट्रॉनिक आवाज।
अनफॉर्चुनेटली जो हम बात हम लता जी को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, लता जी ने अपने गले के जोर के ऊपर, अपने वोकल कॉर्ड्स के जोर के ऊपर गीत गाया। आज के दौर में भी आपको गीत सुनने को मिलते हैं, मगर आज के दौर में जो गीत मिलते हैं वो इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोर पे गीत मिलते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि शायद जैसे जो बस चीजें बहुत स्पेशल होती हैं, जैसे आइंस्टाइन का दिमाग उसको संभाला गया था और उसके ऊपर बाकायदा रिसर्च की गई थी कि क्या चीज स्पेशल थी, तो फिर बाद में पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में जो ग्रूव्स थे वो बहुत ज्यादा थे। आपने कभी दिमाग की सतह हमवार नहीं होती, उतार चढ़ाव हुआ करते हैं, उसमें ग्रूव्स बहुत ज्यादा थे, यानी उसको स्प्रेड करें तो उसकी जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मेरे पास अभी ये इसकी 100% रिपोर्ट तो नहीं आई, मगर ये कहा जाता है कि शायद लता जी का जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनके ऊपर बाकायदा स्टडी की जाएगी कि व्हाट वाज स्पेशल इन हर वोकल कॉर्ड्स कि वो कभी भी बेसुरी नहीं हुई और आवाज उनकी बहुत खूबसूरत थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मेरी जान आप दोनों के शामिल होने का। मेरा बहुत प्यारा भाई लियाकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया
भाई।
जी आप कुछ फरमा रहे थे।
ये मैं आपको एक दो छोटी बातें रह गई बोलना कि इनको जो इनके पेट्स थे वो बहुत सारे इन्होंने पपीज डॉग्स को अपने घर पे रखा था। नौ थे इनके पास, नौ पपीज थे, और इनकी फेवरेट जगह थी लास वेगास आपके यूएसए में। और ये एक बार जॉर्ज हैरिसन बीटल्स से भी मिली हैं और बीटल्स के गाने इनको बहुत पसंद थे, बीथोवेन मोजार्ट और बीटल्स और बाबरा स्ट्राइसेंड के गाने इनको बहुत पसंद आते थे। और इनकी फेवरेट फिल्म थी किस्मत, जिसमें अशोक कुमार थे, और इन्होंने कई बार ये फिल्म देखी।
और इनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी मीना कुमारी जी,
नरगिस
जी। आज ये कुछ बातें हमने एकदम शॉर्ट करके बोल दी, मतलब डाइल्यूट नहीं की, इनको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बोल दिया हमने।
आपने बहुत प्यारी बात बताई, यानी जिंदगी में वो जिस जगह पे रहती थी जाहिर उनके मुलाजमीन होंगे, इसके अलावा 9 पपीज उनके पास थे, यानी और उनकी पसंद की फिल्म भी आपने शेयर की उनकी पसंद। आजकल के दौर में उनको कौन सा सिंगर अच्छा लगता था?
आजकल के वो बोलते थे, हमने उनसे एक बार पूछा था कि आपने गाने इतने बंद कर दिए, कम कर दिए, तो आखिरी गाना शायद इन्होंने 2019 में गाया था, वो भी कोई प्राइवेट गाना था, कुछ मतलब फौजियों के लिए गाया था। और इनको शायद मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने कभी किसी का जिक्र नहीं किया कि मुझे ये पसंद है ये ना पसंद है,
क्योंकि वो अपने गले के जोर पे गाती थी, मगर आज का सिंगर जो है वो अब म्यूजिक के दबाव में गाता है,
वो जगाने के लिए गाता है।
आजकल एक लाइन आपने गा दी, फिर आप चाय पीने चली गई, खाना खाने चली गई, उसके बाद आपने आके दूसरी लाइन गा दी, फिर एक तीसरा सिंगर आया उसने एक लाइन, इन्होंने एक टेक में गाने गाए पहले, एक टेक में गाते थे ये पहले के वक्त में।
थैंक यू वेरी मच।
ये और किस्मत इनकी फिल्म जो थी, इनकी बहुत फेवरेट पिक्चर थी किस्मत, अशोक कुमार की थी, इन्हें बहुत पसंद थी किस्मत। बोलती थी मैंने कितनी बार देखी, मैं 50 बार देखी है, तो 50 बार तो नहीं, लेकिन बहुत बार जब इनको रिलैक्स करना होता होगा देखती होंगी किस्मत।
एक वैसे मैं आपको तो बताऊँ, 50 बार भी देख सकते हैं, मैंने कई चीजें 100 बार भी देखी हुई है। अच्छा, देख सकते हैं 50 बार भी। अगर उन्होंने 50 बार गाया तो हो सकता है उन्होंने 60 बार ही देखी हो।
दिमाग ठीक।
एक और बात, एक ओपी नैयर साहब थे म्यूजिक डायरेक्टर, आपने जरूर नाम सुना होगा।
जी जी,
तो उनके साथ इन्होंने कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया।
क्या वजह
उसकी नहीं पता, लेकिन गाना नहीं गाया उनके साथ। मतलब कितना भी आदमी सॉफ्ट हो, उसकी एक अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं। सबके साथ गाने गाए उन्होंने, मतलब अगर मैं म्यूजिक देता तो शायद मेरे लिए भी गा देती, उनकी ग्रेटनेस होती। लेकिन उन्होंने ओपनर जो कि अपने वक्त में अच्छा नाम करके गए, उनके साथ उन्होंने कभी गाना नहीं गाया।
सुनील आपका और राजेश आपका बहुत शुक्रिया। लाइक भाई आई लव यू, यू नो दैट यू आर माय वंडरफुल ब्रदर।
लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आर ग्रेट।
थैंक यू, थैंक यू। ओके, सुनील फिर बातचीत होगी
इंशाल्लाह। एक गीत की तरफ लेके चलते हैं हम और आपसे मुलाकात इसी तरह जारी रहेगी।
अरिफा जी ग्रेट, और लियाकत साहब ग्रेट जिन्होंने हमें ये मौका, माजिद साहब ग्रेट जिन्होंने हमको ये मौका दिया।
थैंक यू वेरी मच।
आवाज टीम आपकी, ई आवाज टीम को, सॉरी मैं आवाज बोल रहा हूँ,
आमिर 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 है,
आमिर है,
सरवत फारूक है, शाजिया मलिक है,
सब सब पूरी टीम, लता जी भी खुश होंगी कि आज
थैंक यू जी
मेरे बारे में जिक्र हो रहा है कनाडा में।
बहुत शुक्रिया,
थैंक यू वेरी मच।
की तरफ हम आप सुनना चाहते हैं, आप इस गीत को एंजॉय कीजिए।
थैंक यू, गाना सुनते हैं फिर रुख्सती लेते हैं।
ओके जी, ओके,
बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा, गीत को एंजॉय कीजिए।
जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदा, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब से पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दीवाना हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
जी साहब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदेद कहना चाहती हूँ आपको। दादाजी के लिए हमने अभी ट्रिब्यूट पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जनाब प्रदीप जी, स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जिनके तवसुत से हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दो बॉक्स पिज्जा के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज मैंने क्विकली आपकी मुलाकात गीतियारा जी से भी करवानी है। गीतियारा जी से हम बात करवाएंगे आपके कि दो बॉक्स है क्या। एक बात याद रखिएगा कि आप किसी भी, मुझे एक भाई साहब ने जब किया ना कि वहाँ पे नॉन हलाल भी मौजूद है, तो आप कहीं भी चले जाएं हर जगह पे, मगर गीतियारा की मौजूदगी में अंडर द सुपरविजन ऑफ हर हलाल को खास तौर पे दिया जाता है। इट्स बहुत से नॉन मुस्लिम भी उस हलाल फूड का इस्तेमाल करते हैं। इट्स दो बॉक्स पिज्जा लाटिमेयर ड्राइव के 5955 लाटिमेयर ड्राइव के ऊपर ये वाक़ है मिसिसागा में। www.dobox.ca आज हम भी पहुंच रहे हैं, आप भी वहां पे पहुंचिएगा। वेरी डिलीशियस पिज्जा ना, और मैं आपको बताती हूँ एक दफा खा लेंगे ना तो आपको तलब होगी उस पिज्जा की। इट्स बिल्कुल वेजिटेरियन या जो भी मीट लवर्स हैं, इसमें 4-5 इनके पास डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं चीज के, आप उनको ट्राई कीजिए। 9057900734 790-0734 उनका नंबर है। वुड फायर्ड पिज्जा एंड पास्ता भी यहाँ पे मिलता है, यानी इट्स अ वेरी यूनिक पिज्जा। हम तो अपने घरों में जब खाना, वो कहते हैं हिकरी टेस्ट आना चाहिए, तो ये तो बनता ही वुड अवन में है। मस्ट ट्राई इट। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, प्रदीप जी सन लाइफ के साथ वापस आए। प्रदीप जी क्विकली आप अपना तारुफ करवा दीजिए।
आरिफा जी आपको और आपके सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टॉक शो। जैसा कि हर बार मैं अपने बारे में बताता हूँ, पिछले 23 साल से मैं लाइफ इंश्योरेंस फील्ड की हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता चला रहा हूँ, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, डिसेबिलिटी है, मॉर्गेज इंश्योरेंस है, ग्रुप ट्रैवल इंश्योरेंसेज हैं, बिजनेस इंश्योरेंसेज वगैरह वगैरह। और 23 सालों में जो कि मेरा यही काम रहा है सन लाइफ में आके कैनेडा में, मेरी मेन कंपनी रही है सन लाइफ, जो कि सबसे बड़ी वर्ल्ड की कंपनियों में से एक है। नॉर्थ अमेरिका की अकेली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका शुमार आरिफा जी 100 मोस्ट सस्टेनेबल ग्लोबल कॉरपोरेशंस में होता है।
इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स डील करते हैं आप?
मैं सब तरह की प्रोडक्ट्स डील करता हूं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ इंश्योरेंस विद सेविंग्स, विदाउट सेविंग्स, विद डिविडेंड्स, विदाउट डिविडेंड्स, और इसके अलावा क्रिटिकल इलनेसेस हैं, बेसिक क्रिटिकल इलनेस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, डिसेबिलिटी इंश्योरेंसेज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, साथ में मॉर्गेज लाइफ इंश्योरेंस जो कि बैंक प्रोवाइड करती है वो, साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस आरिफा जी, और बिजनेस इंश्योरेंसेज, ग्रुप इंश्योरेंसेज, और यू नेम इट एंड आई प्रोवाइड।
इट्स एन इंटरनेशनल कंपनी। प्रदीप जी आपका इतना बेशुमार तजुर्बा है, और जाहिर है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की तरह से ये इंश्योरेंस कंपनी भी हर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ एडवाइजर? व्हाई एडवाइजर इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ?
आरिफा जी बहुत शानदार सवाल है, क्योंकि आप देखिए आजकल इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन हर जगह, हर तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि आदमी चाहे तो सुबह से शाम तक पढ़ता रहे किसी भी एक फील्ड में, और सारी जिंदगी में भी पूरी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाएगा। और उससे बड़ी बात यह कि उसके लिए क्या चीज मुफीद है, क्या चीज उसके लिए रेलिवेंट है, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो ये जो काम है, इन्फॉर्मेशन तो सब जगह अवेलेबल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है वो है एडवाइजर का, और वो भी एडवाइजर का क्या रोल है, उसकी एडवाइज जो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उस पे फिट बैठती हो, उसकी जरूरत पूरी करती हो, उसके बजट के अंदर आती हो, उसकी फैमिली और उसके अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को कवर करती हो। आरिफा जी
यानी एडवाइजर शुड नॉट बी सेल्फिश, जो से अपना बेनिफिट देख रहा हो, वो ये देखे कि मेरे क्लाइंट की कैपेसिटी क्या है, व्हाट ही कैन अफोर्ड,
दैट्स वन। एंड सेकेंडली एडवाइजर का जो सबसे बड़ा रोल है, सेल्फलेसली काम करेगा अपने क्लाइंट के लिए, उसके मन में ये फीलिंग होगी कि वॉट एवर ही सेज और डज वो क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। और वो क्लाइंट का बेस्ट इंटरेस्ट कैसे होगा, वो क्लाइंट की सिचुएशन समझने की कोशिश करेगा क्लाइंट को समझेगा, क्लाइंट के बजट को समझेगा, उसकी फैमिली स्ट्रक्चर को समझेगा, उसके बाद ही उसको समझ में आएगा कि क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और वो उसको प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लेन करेगा।
दिस इज ऑन गोइंग एजुकेशन।
ऑफकोर्स आरिफा जी, ये तो ऑन गोइंग एक्टिविटी है और साथ साथ एडवाइजर्स को ऑन गोइंग एजुकेशन लेनी पड़ती है। इनको हर दो साल में 30 प्रोफेशनल एजुकेशनल क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं कंपल्सरीली, कम से कम, और बेसिकली बहुत तरह की क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ती है, इसलिए कि वो खुद सीखते हैं और जब तक वो नहीं सीखेंगे तब तक वो पब्लिक से क्या डीलिंग इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे।
प्रदीप जी, बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं अपने फाइनेंसिस को जानता हूँ, मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर इन समवन्स लाइफ?
फाइनेंशियल प्लानर का बहुत बड़ा रोल था आरिफा जी। आप एक बात समझें कि कई बार हमारे लोगों को, खासतौर से हमारी जो कम्युनिटी साउथ एशियंस को, बहुत बगालते हैं। सबसे बड़ी उनके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है ज्यादातर लोगों के कि वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिनको दुनिया की का चलाने का तरीका मालूम है, जिनकी अकल का कोई और सानी नहीं है, लेकिन वो अपने बारे में 20 मिनट 30 मिनट नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि वो उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, उनके प्रेफरेंसेज हैं, वो उसको समझ नहीं पाते और उसको हिसाब से नंबर वन, नंबर टू, नंबर तीन नहीं कर पाते और उस पर कितने रिसोर्सेज और टाइम देने वो तय नहीं कर पाते। तो ये जो मुगालता है हमारा कि हमको सब मालूम है, ये इससे आदमी को बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो गुरूर हो जाता है ये आदमी को बर्बाद कर देता है कई बार। और आपको इसीलिए पता होगा कि यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट की तरफ से ममानियत है। क्योंकि जब आदमी अपने उसके अंदर वो पहुंच जाता है तो वो रैशनल डिसीजन कई बार नहीं ले पाता।
अच्छा, एक होता है कि एक दफा पॉलिसी ली और जाके दराजों के बीच में रख के चली गई, पॉलिसीज को रिव्यू करना क्यों जरूरी है?
पॉलिसीज को रिव्यू करना आरिफा जी बहुत जरूरी इसलिए है कि कोई भी पॉलिसी जो आज लिखी गई है वो आज की सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल प्लान है, लेकिन कोई भी पॉलिसी किसी भी कंपनी की हमेशा 100% सिचुएशंस में वो 100% अपना इफेक्ट नहीं रख पाती और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। पहली तब्दीली जैसे आती है पॉलिसीज में, सबसे कॉमन बात, हमारा एड्रेस चेंज हो गया, लोग एड्रेस चेंज कराना भूल जाते हैं, कंपनी के जो नोटिसेज हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो गलत एड्रेस पे जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि फैमिली स्ट्रक्चर बदल गया, जो हस्बैंड वाइफ थे हो सकता है वो अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहे हैं, उनका तलाक हो गया या उनमें से कोई एक इंतकाल कर गया, जो बेनिफिशरीज थे अब वो बेनिफिशरी नहीं रहे। आपने बेनिफिशरी बनाया था कि मेरी डेथ के बाद मेरे पैसे मेरे वालिद साहब को मिले या फिर मेरी मदर को मिले या वाइफ को मिले, अब हो सकता है उनमें से कोई इंतकाल कर गया हो या इस पोजीशन में हो कि पैसों को हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बार कई बार बुजुर्ग लोग डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं, या फैमिली में इजाफा हो गया, पहले हम लोग सिंगल थे अब शादी हो गई और अब बच्चे भी हो गए तो उनका नाम भी ऐड होना है, तो बहुत सारी चीजें। प्लस पहले मॉर्गेज हमारे पास 2.5 लाख की थी, अब हमारे पास 12 लाख की मॉर्गेज हो गई, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई। तो आरिफा जी, ये जो चीजें हैं इसके लिए बहुत जरूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपने प्लान को रिव्यू करें।
बहुत शुक्रिया। क्लेम में भी रोल प्ले करता है एडवाइजर?
सन लाइफ में जरूर करना पड़ता है, क्योंकि सन लाइफ में आरिफा जी हर क्लाइंट के पास एडवाइजर होता है। सन लाइफ लोगों से पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगती क्योंकि 80-90% घरों में मिलते नहीं, लेकिन एडवाइजर की सन लाइफ में रिस्पांसिबिलिटी होती है कि क्लाइंट की जब किसी की डेथ हो जाए तो डेथ क्लेम एडवाइजर बनवाता है, हेल्प कराता है, उसकी कोई फीस नहीं होती। तो इससे क्लेम क्या है कि बहुत जल्दी और सही तरीके से बनता है, क्योंकि एडवाइजर का तो काम ही यही है, पॉलिसीज लिखना, उनकी सर्विस करना और टाइम पे क्लेम बनाना। तो उसमें फिर पैसे बहुत स्पीड से मिलते हैं और सन लाइफ चूंकि इंटरेस्ट देती है क्लेम के ऊपर तो उनको हमेशा जल्दी रहती है आरिफा जी कि जल्द अज जल्द क्लेम को निपटाया जाए, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना वो अपने लिए लॉस का
سودا سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پچھلے دو سال میں جب سے کووڈ ہوا ہے عارفہ جی بے تحاشا کلیمز آئے لیکن سب کو پیسے ملے, اور سن لائف نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا, یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی بارکی کی کمپنیاں کہتی ہیں کہ کووڈ میں یہ ہے وہ ہے پینڈیمک ہے. سن لائف نے کہا کہ اگر ہم نے اس کو شروع میں ریسٹرکشن نہیں لگائی ہے جب پالیسی ایشو کی تو ہم بعد میں نہیں کر سکتے. میرے بہت سارے کلائنٹس کی ڈیتھ پینڈیمک سے ہوئی ہے
جی.
میرے سارے سارے کلیم جو ہیں عارفہ جی سپیڈ ٹائم میں پاس ہوئے, 10 دن 8 دن 7 دن, اور پچھلے مہینے جو لاسٹ کلیم آیا تھا جنوری میں وہ 2 دن میں فرائیڈے کو سبمٹ کیا اور منڈے کو چیک پہنچ گیا, کوریئر میں ڈال دیا گیا.
سر آپ اپنا نمبر دیجیے
416-894-5872 عارفہ جی
ایک دفعہ پھر سے نمبر دے دیجیے گا
416-894-5872 عارفہ
894-5872 سن لائف کے ساتھ وابستہ پردیپ جی کے نام کو یاد رکھیے گا. سر آپ کو بہت شکریہ,
تھینک یو ویری مچ عارفہ جی. اور لاسٹ میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی کے پاس کسی کو لائف انشورنس ضرورت ہو یا آپ نے کسی بھی کمپنی کی کوئی بھی پالیسی لے رکھی ہو اس کو ریویو کرانے میں میری ہیلپ لیں, 416-894-5872 پہ مجھ سے رابطہ کریں. کوئی کاسٹ نہیں ہے, کوئی آبلیگیشن نہیں ہے, اور آپ سنیں سوچیں اور پھر جو آپ کو ٹھیک لگا وہ ویسا فیصلہ لیں. Have a nice day.
بہت شکریہ پردیپ جی, بہت شکریہ پرمندر جی. مجھے آپ کی فرمائش دیر سے ملی ہے اور آپ کا گیت بھی میں دل تو ہے دل دل کا کیا اعتبار مقدر کا سکندر فلمز میں ضرور لگائے دیتی ہوں, مگر ایک ملاقات میں ایک ایڈورٹائز کر رہی ہوں آپ کے ساتھ دو باکس پیزا. دو باکس پیزا سے میری اپنی اور ہماری اپنی گیتیارا میرے ساتھ موجود ہیں. گیتیارا جی گڈ آفٹرنون, کیسی ہیں آپ؟
جی وعلیکم السلام. اور جی
یہ تو لگتا ہے جیسے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تم کو تمیز نہیں کہ اپنوں کو سلام کیسے کرتے ہیں. السلام علیکم.
نہیں آپ نے مجھے گڈ آفٹر نون کہا نا, آپ نے انگلش میں بولا, میں نے اس کو اردو میں.
السلام علیکم, کیسی ہیں گیتیارا جی؟
جی الحمد للہ.
گیتیارا جی میں آپ یقین کیجئے گا کل بھی جب شام کو گئی تو میرا بیٹا مجھے کہہ رہے تھے کہ مما لیٹس گو ٹو ڈو باکس, آج انشاءاللہ ہم ضرور پہنچیں گے, آج آپ وہاں نہیں ہوں گی. اچھا کسی بھی اسٹور پہ چلے جائیں اور یقیناً آپ کو بہت سے لوگوں کو میں نے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, گیتیارا آپ کی اپنی وہاں پہ ہوتی ہیں اور اٹس حلال اینڈ آف کورس بے شمار کمیونٹی, وی لیو ان اے ڈائیورس کمیونٹی, نان حلال بھی ہے, بٹ دا بیوٹی آف دس از اٹس اے ویری یونیک پلیس. واٹ از دا یونیکنیس آف ڈو باکس پیزا؟
دو باکس پیزا کی سب سے بڑی یونیک بات یہ ہے کہ یونیک تو نہیں ہے, مطلب پہلی بات یہ ہے کہ وہ اٹالین ہے, اتھینٹک اٹالین فوڈ ہے. اس کے باوجود وہ حلال سرو کر رہے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے, کیونکہ عموماً اٹالین ریسٹورینٹ جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کے پاس حلال کا آپشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان کے پاس حلال سمجھے, چکن تو حلال ہے جو کہ سارجنٹ فارم سے چکن آ رہی ہے.
اچھا,
اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تاکہ لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں کہ حلال کس قسم کا ہے, لیکن وہ سارجنٹ فارم کی چکن ہے.
اچھا,
اور اس کے علاوہ ان کی جو میٹ میں میٹ بال اور حلال پیپرونی, تین آئٹم بالکل حلال ہیں, کسی قسم کی اس میں وہ نہیں ہے. اب وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اگر آگے کچھ ہو رہا ہے تو پیچھے سے کچھ آ رہا ہے, لیکن ویسے ہی ایسا
ایبسولیوٹ سرجن فارم سے یہ منگواتے ہیں. پیزا کی ڈو بہت باریک ہوتی ہے, اینڈ دی بیسٹ تھنگ از اٹس وڈ فائر پیزا, دیر آر ناٹ سو مینی. اور میں نے تو خیر اس کا پہلا پیزا ڈو باکس کا کھایا جو وڈ فائر پیزا, اور مجھے حلال مل گیا, واٹ ایلس آئی وانٹ, نتھنگ. گیتیارا جی مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ہم پیزا, اکثر اوقات جب لوگ اپنے سے ہٹ کے کوئی نام سمجھتے ہیں نا, تو میں بلکہ آپ کو کہتی ہوں اپنوں پہ آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے, اٹس اے ویری ریزنیبل. ان واٹ آر دی ڈفرنٹ, مثال کے طور پر میں نے مارگریٹا پیزا میرے بیٹے نے کھایا ہوا تھا, تو جب وہ بنوا رہا تھا تو میں کہتی یا اللہ پیز کتنے قسم کی چیز وہاں پہ موجود ہے.
چیز تو بہت, دے ہیو اے لاٹ آف ورائٹی, اور جس میں موزریلا ہی کی سمجھیں دو ورائٹی تو یہ کہ ایک تو شریڈڈ موزریلا جو ہم عام استعمال کرتے ہیں, اس کے علاوہ پیو ڈی لیکے کر کے ایک ہے جو سافٹ موزریلا کہلاتی ہے, اور وہ بہت لائک مارگریٹا کی اس کو کہتے ہیں ہارٹ اینڈ سول ہے آف مارگریٹا پیزا, تو اٹس ریئلی امیزنگ. آل دیز فلیور لائک دے ہیو एसियागो, दे हैव गोट चीज, दे हैव मतलब हर किस्म की चीज इनके पास मौजूद
आज
है।
मैंने गोट चीज का पिज्जा खाना है।
जी बिल्कुल खाइए, और इसके साथ मुझे अच्छी फीडबैक ये भी मिली कि गोट चीज का उसने जो वहाँ पे गेस्ट आए उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है चीज का पिज्जा पे।
एग्जैक्टली
इसके अलावा इनके पास
जी आप बात कीजिए
जी। इसके अलावा इनके पास जो बिसाइड ये कि थिन बेस है इसकी जो कि नॉर्मल एक पिज्जा की होनी चाहिए, उसके अलावा लोग थिक बेस भी करते हैं अगर ऑर्डर करें, और दूसरा ये कि ग्लूटेन फ्री भी करते हैं, ग्लूटेन फ्री पिज्जा है इनके पास, और इनके पास कॉलीफ्लावर पिज्जा है, कॉलीफ्लावर बेस है, मतलब बेसिकली बेस है जो कुछ लोग एलर्जी हैं जो किसी चीज से ग्लूटेन फ्री इस तरह की भी,
यानी वो जो उसकी उसकी जो क्रस्ट है वो कॉलीफ्लावर की,
कॉलीफ्लावर की है और ग्लूटेन
फ्री। नई बात सुनी ये तो मैंने, अच्छा कॉलीफ्लावर की, चलिए आज कॉलीफ्लावर की ट्राई करके देखती हूँ। यानी वो लोग जो स्टार्च नहीं खाना चाहते तो वो कॉलीफ्लावर पिज्जा ले सकते हैं। इट्स अ न्यू थिंग, वेरी न्यू थिंग टू मी, आई नेवर न्यू अबाउट।
और जी दूसरा एक इनके पास अच्छा ऑप्शन अभी इन्होंने स्टार्ट किया है एज डिमांड, कि जैसे बहुत से लोग हैं जो कि जमीन की नीचे की चीजें जो ग्रो करती हैं वेजीज वो नहीं खाते हैं उनका, तो वो उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि जो सॉस है, जो हमारा सॉस है वो सॉस जो है वो खाली टोमेटो एंड सॉल्ट एंड पेपर वाला सॉस है, उसमें किसी किस्म की जिंजर गार्लिक या कुछ ऐसा नहीं पड़ा हुआ है, ताकि जो लोग नहीं खाते हैं उस तरह का, जिस वजह से वो ट्राई कर सकते हैं, बट दे हैव टू आस्क अबाउट इट।
अच्छा, जो आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वैसे मैं आपको कान में बताती हूँ, आप अपना कान मेरे करीब करें, आप अनलिमिटेड पिज्जा ट्राई कीजिएगा, अनलिमिटेड, इट्स नॉट वेरी
अनलिमिटेड, तो अमेजिंग है, सबसे ज्यादा
अमेजिंग
बहुत अमेजिंग है। उसमें कंफ्यूजन ये नहीं होता कि अगर आपको मुख्तलिफ इनके पास 9 किस्म के पिज्जाज हैं, तो उसमें अगर आपको एक चीज पसंद है एक चीज नहीं पसंद है तो आप स्ट्रिक्ट हो जाते नहीं, यू हैव टू बाय दिस, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आप अनलिमिटेड पिज्जा ले लें या वन टॉपिंग लें या टू टॉपिंग, अनलिमिटेड पिज्जा जो है वो सबसे बेस्ट है, उसमें आप लाइक अ सबवे आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको ये चीज चाहिए ये
मतलब
चीज
जो पसंद आई जाए पाई जाओ, जी सो डिलीशियस माय गॉड।
और वुड फायर है सबसे अच्छा, ये कि एंड रिजल्ट जो है जो वो वुड फायर में बेक होता है और निकलता है, इट्स लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
अच्छा गीतियारा जी, साजो आवाज के हवाले से उन्होंने मुझे 10% दिया है, अगर कोई साजो आवाज का रेफरेंस देता है तो यू विल गेट 10% ऑफ, बिग डील, हैव अ फीस्ट इन योर होम। और पिज्जा मंगवाइए, डो बॉक्स पिज्जा, 5955 लाटिमेयर ड्राइव पे, डो DOUGH डो बॉक्स पिज्जा। गीतियारा जी थैंक यू वेरी मच
जी। इसके अलावा एक क्विक आपको बता दूं, इनके पास सैलड और पास्टर्स भी हैं।
अच्छा,
और पास्टर जो है ये इन फ्रंट ऑफ हाउस यानी आपके सामने वो कुक करते हैं।
अच्छा, हमारे सामने, चलो तरीका ही सीख के आएंगे, ऐसे जैसे करके सीखेंगे, फिर देखिए कि इसमें क्या डाला हुआ, इसमें क्या डाला हुआ, इसमें क्या डाला हुआ, और फिर हम अब घर आके भी बना लेंगे। ठीक है गीतियारा जी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच
जी, थैंक यू।
एक गीत की तरफ लेके चलती हूँ गीतियारा ने, और साहब मैंने बजमैक्स के बारे में भी तो आपको बताना था, आज मैं बजमैक्स, लता जी के चक्कर में मैं बजमैक्स को भूल गई, बजमैक्स इंटरनेट लगवाना चाहते हैं तो बजमैक्स 15 दिन के लिए फ्री ट्रायल, एब्सोल्यूट फ्री ट्रायल, बजमैक्स www.buzzmax.ca 416-800-0900 बजमैक्स से रब्ता कीजिएगा, अनलिमिटेड इंटरनेट है, जितनी मर्जी डिवाइसेस हो, एंड दे आर सो श्योर ऑफ देयर प्रोडक्ट के 15 डेज फ्री ट्रायल, एब्सोल्यूट फ्री ट्रायल, buzzmax.ca 416-800-0900, कॉल नाउ, फ्री ट्रायल 15 दिन का, अनलिमिटेड इंटरनेट है, बेहतरीन स्पीड है, डायल 416-800-0900, तो 15 डेज फ्री ट्रायल विद द रेफरेंस ऑफ साजो आवाज। गीत कौन सा सुना रहे हैं?
प्रदीप जी की फरमाइश पर यह गीत है, लता मंगेशकर जी की आवाज फिल्म बरसात से।
चलिए जी सुनिए, एंजॉय दिस सॉन्ग।
दुपट्टा मन मन का हो जी हो जी, इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मल मल का, मोरा लाल दुपट्टा मल मल का हो जी हो जी।
जी हमारे क्रम 4:40:57 हमारी घड़ी में हो चुके हैं, और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, अपने स्पॉन्सर्स के पैगाम की तरफ चलें, एक और फरमाइश है हमारे पास, एंड लेट मी प्ले दैट सॉन्ग। इसके फौरी बाद हम परविंदर जी आपकी फरमाइश पर ये गीत मुकद्दर का सिकंदर, दिल तो है दिल समा फरमाइए।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨੈਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ। 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਕੇਅਰ।
विंटर का मजा विंटर वंडरलैंड ब्रैम्पटन में। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से फैमिली फ्रेंडली विंटर एक्टिविटीज को एंजॉय करें। आउटडोर स्केटिंग, स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग, ट्यूबिंग और हॉलीडे प्रोग्रामिंग। विंटर वंडरलैंड एक्टिविटीज के लिए विजिट करें brampton.ca/winterwonderland। विंटर अभी बाकी है।
खुशियों पर लिमिट और फन की स्पीड अगर कम हो तो सब कुछ अब बोरिंग। और ऐसा ही है कुछ आपके इंटरनेट के साथ, मगर अब ना लिमिट की फिकर और ना ही स्पीड का गम buzzmax.ca के साथ। जी हाँ, हाई स्पीड अनलिमिटेड इंटरनेट या होम फोन के साथ बंडल ऑफर के मजे उड़ाइए, वो भी अनबिलीवेबल प्राइस में। नो कॉन्ट्रैक्ट, नो क्रेडिट चेक, यानी मैक्स स्पीड अनलिमिटेड फन के साथ। फॉर डिटेल्स लॉग ऑन टू buzzmax.ca और कॉल 416-800-0900.
For business owners and Canadians who continue to struggle, there are targeted financial support programs available now. Visit canada.ca/coronavirus to learn more. A message from the Government of Canada.
ਡਾਈਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਸਟਡੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਦੌਲਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ।
S&S Lawyers ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਕਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ S&S Lawyers ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-655-2000।
Public announcement. On January 25th, 2021, Biraj Broadcasting Corporation, the licensee of WTOR AM 770 KHZ, Youngstown, New York, filed an application with the Federal Communications Commission for license renewal. Members of the public wishing to view this application or obtain information about how to file comments and petitions on the application can visit publicfiles.fcc.gov and search in WTOR AM Public File. Thank you.
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे। बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, 9054578661।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
तुम घर क्यों नहीं खरीदते?
मेरे लिए आज की मार्केट में घर खरीदना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है।
मैं भी ऐसे ही सोचता था, मगर रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स ने सब कुछ आसान और मुमकिन बना दिया और देखो आज मेरा घर है।
जस्टिन जेम्स को कैसे कॉन्टेक्ट करूँ?
रॉयल कैनेडियन रियल्टी के जस्टिन जेम्स 647-688-6931 647-688-6931
Spirit McKay Menswear. Three elements does represent the brand, fit, quality and value. Only South Asian owned men's custom sweating and shirting company in Canada. Fully vertical operation, direct from factory to customer. Quality compared to Harry Rosen, Burberry and Hugo Boss. 100% Italian wool suit starting from $2.99. 100% Egyptian cotton shirt starting from $29.99. Chinos, Mariano, wool sweaters, denim jeans, corduroy shirts, trousers and more. Visit today, 1535 Merseyside Drive, Unit 19. 20 Mississauga. Call
जी सामने नाजरी वेलकम बैक अगेन एंड साहब 4:51 और 19 सेकेंड हमारी घड़ियों में हो चुके हैं. खबरें बहुत हैं, टाइम वक्त कम है और हम दौड़ते भागते तेज गांव में बैठेंगे और आपको मगर सुनानी सारी खबरें. आप ये देख लें कि हमने सुनानी, हमने भी कोई कुछ कटाव वटाव नहीं करना है, हमने सारी खबरें सुनानी है आपको. तो लीजिए साहब, शाजिया मलिक जी मेरे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसी हैं आप?
सलाम, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह,
खैरियत से. आज तो बड़ी पोएट्रियां और बड़ी गाने जाने चल रहे थे, हैं देख ले,
देख ले.
वो एक बच्चा था ना, उसको एक टीचर ने एक क्वेश्चन दिया ना एग्जाम में कि अलामा इकबाल को पोएट ऑफ द ईस्ट क्यों कहते थे.
अच्छा,
तो उसने जी वो लिखा, उसने कहा जी अलामा इकबाल साहब बड़े लायक थे, वो स्कूल से ही लायक थे, जब वो कॉलेज में पहुंचे तो और ज्यादा लायक हो गए, लेकिन फिर कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उनको एक उस वक्त की जो हिंदू जो एक लीडर थे बहुत बड़े, उनकी बेटी से प्यार हो गया.
अच्छा.
तो वो हिंदू लीडर को पता चल गया, उन्होंने उसकी बेटी को अपनी को पकड़ के खूब मारा. अलामा इकबाल बड़े उदास हो गए, फिर उनके पास गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप अपनी बेटी की मेरे से शादी कर दें. उन्होंने उसको भी अपने घर से निकाल दिया, उस गम में वो शायर बन गए और फिर वो पोएट ऑफ द ईस्ट कहलाने लगे. टीचर ने उसको 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से जीरो दिया बट लिखा 100% फॉर क्रिएटिविटी.
ठीक है जी,
तो बस मैं जैसे क्रिएटिव होना चाहिए है जी.
ठीक हो गया, हम तो यहाँ बैठे सारे क्रिएटिविटी है.
हाँ
हाँ हाँ, हम तो न्यूज भी क्रिएट करते हैं,
क्रिएट करते हैं और पहले से बता देते हैं क्या आने वाला है.
और इससे बड़ी क्रिएटिविटी क्या होगी?
क्या होएगी? देखिए लोग अप्रिशिएट नहीं करते हमारी क्रिएटिविटी.
लेकिन आप बताएं, हम आपको क्रिएट करके बता रहे हैं क्या.
एग्जैक्टली, वरना ये जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं मैकेंजी टाइप की, ये जो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनियों को बता रही हैं तुमने कैसे बिजनेस करना है, हम भी बता रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है, हमें कोई पहन नहीं देगा.
पॉलिटिशियंस को बता रहे हैं
क्या होने वाला है. देखो जरा, कोई मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं.
हाँ जी,
ये बड़े अनग्रेटफुल है हमारी जो कॉम है ना. ओहो, हम जैसे जीनियस जो है बड़े उनको अप्रिशिएट नहीं कर रही है.
देखें जब अब ऑटवा में जो हो रहा है, हर कोई अपना 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 कह रहा है. विद इन वीक टू टेन डेज आई थिंक वहां का
ठंडा पड़ जाएगा सारा मसला,
सारा सफाया कर देंगे जी.
यस,
क्रिएट किया ना हमने.
हाँ जी.
ये न्यूज आई नहीं है.
नहीं नहीं नहीं, हाँ. हमने 10 दिन पहले दे दी है.
हमने 10 दिन पहले दे दी है.
हाँ.
साहब आप देखिएगा, विद इन डेज नाउ.
यस,
छुट्टी
छुट्टी है. हाँ, बिल्कुल छुट्टी है.
वो तो अब नहीं, अपनी गवर्नमेंट बनाने के चक्कर में कि जी एक एक शैडो गवर्नमेंट होगी हमारी.
कहानियां ही है,
कहानियां है.
हाँ जी, हाँ जी,
ऑपोजिशन के साथ मिलके वो
हाँ
कह रहे हैं कि हम एक नई गवर्नमेंट बनाएंगे कनाडा की, और इस गवर्नमेंट को कोई नहीं पूछेगा. हाँ, हमारी गवर्नमेंट चलेगी.
हाँ, यानी इधर भी पीडीएम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं यहाँ पे भी पीटीआई की गवर्नमेंट है. ऐसा नहीं है जी,
वो चाहिए मौलाना साहब से कॉन्टेक्ट.
हाँ, स्ट्रेटेजियां सीखे उनसे जरा.
हाँ,
कि उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को कैसे हराना है.
मौलाना साहब यहाँ भी आगे कहेंगे भाई, हाँ, सबसे पहले अपने सारी जो सीटें ना,
हाँ, रिजाइन करो रिजाइन तो किसी ने करना नहीं है.
हाँ,
है जी,
वो उन्होंने कहा जी सबने रिजाइन कर.
हाँ, उसके बाद हम मर्चे निकालेंगे.
सॉरी, मार्च तो लेके आ गए ये कहां से लेके आए देखिए
तो मार्च तो आ गया ना बस
उन्होंने अपनी बात कह दी जो कहना था उन्होंने कह दिया मेरा ख्याल नाउ इज अ टाइम कि अब कूल डाउन होना चाहिए लाइफ को वापस दोबारा अपनी जगह पे आना चाहिए
यस एग्जैक्टली यही बात है महेश भाई ठीक है जी चलो जी फिर और हम अपनी बाकी
की इतना जरूरी है कि पूरे पूरे कनाडा में लोगों की आंखें खोल दी कि भाई अब ये कोविड वोविड को खत्म करो यू नो इसको
जितना साइड पे रखो जी
हाँ इसको साइड पे रखो ब्रिंग द जो लाइफ नॉर्मैलिटी की तरफ लेके आओ नॉर्मल लेके आओ एंड फॉरगेट अबाउट ऑल दिस कोविड वगैरह हर एक ने जो आज जो एमपी था आपके पास न्यूज होगी वो भी वो जो एमपी है क्वेबेक का उसने भी कहा कि भाई हम हमारे जो है वन ऑफ द मोस्ट वैक्सीनेटेड नेशन इन द वर्ल्ड तो अब मेरा ख्याल है कि इस चीज को यू नो एवरीबॉडी प्रीटी सेफ राइट नाउ यू नो दो तो सबसे ज्यादा लगा लिए हैं अब तीन भी लगा लिए लोगों ने लोगों के तो हाथ नहीं उठ रहे मगर इस दफा तो कम से कम ये हुआ कि शाहजिया जी ने लेफ्ट पे हाथ पे इंजेक्शन लगवाया अपना जो कोविड थ्री का तो दर्द हो रही है आई कैन अंडरस्टैंड दैट और वो भी लेफ्ट पे लास्ट टाइम जब इन्होंने कोविड टू लगाया था तो इन्होंने लेफ्ट पे लगाया राइट पे दर्द हो रहा है ओ लाइक आई हैव नो क्लू मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इसके मुतालिक बात की है मगर उन्होंने कहा कि लेफ्ट पे लगाया इंजेक्शन और राइट पे अगर दर्द हो रहा है तो मेरा ख्याल है आई गिव अप
क्यों जब बूस्टर्स लगते हैं तो बॉडी जो है पेन करती है ना मजद भाई बाकी की बॉडी जो है तो वो बॉडी का हिस्सा है कि ये आर्म भी है ना तो अगर कमर में दर्द है सर में दर्द है तो ये इसमें आर्म में नहीं दर्द हो सकता मजद भाई
मगर वो अभी उस पर तहकीक कर
तहकीक हो रही है अच्छा
इंकिशाफ करेंगे
रिसर्च चल रही है
रिसर्च चल रही है बड़ी बड़ा
टीका लेफ्ट पे लगे और दर्द राइट पे हुए ठीक है
वो कितना कि वो तलवार लेफ्ट पे लगी और राइट पे दर्द हो रहा है
हाँ जी जख्म राइट पे है ठीक है जी
महबूबा ने राइट को मारा लेफ्ट पे दर्द शुरू हो गई वो तो आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज लेफ्ट पे दिल है ना
दिल है
तो
दिल गलती पर बैठा है गलती कर बैठा है दिल
कर बैठा है जी
हाँ जी चलो जी आप गलती ना करना बिल्कुल आपने सिर्फ एक ही वेबसाइट पे जाना है eawaz.com पे जाएं बड़ी प्यारी हमारी वेबसाइट है इस पे आप सारा कुछ वन स्टॉप शॉप है जैसे हम आपको हमेशा बताते हैं लाइव रेडियो आप सुन सकते हैं लाइव टीवी देख सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज देखें उसके नीचे आप देखें जी लोकल की खबरें बहुत सारी और फिर हम जो है अपडेट करते हैं हेल्थ मेडिसिन लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट की स्टोरीज भी ऑन डेली बेसिस फिर यूथ जोन में जब स्टोरीज आती हैं वो हम डालते हैं और कनाडा की खबरें हैं और स्पोर्ट्स की खबरें हैं और राइट साइड पे आपको नजर आएंगे हमारे स्पॉन्सर और बड़े प्यारे स्पॉन्सर हैं हमारे साथ जुड़े हुए आप भी प्लीज उनके साथ जुड़ने की जरा कोशिश करें ताकि हमारे साथ ऐसे ही चलते रहें और हम आपके पास ये प्यारी सी खबरें लाते रहें ठीक है जी अच्छा जी अच्छा माजिद भाई पहला जो हमारी जो स्टोरी का जो पहली स्टोरी है हमारी बहुत सारी स्टोरियों में वो तो जाहिर है वही जो चल रहे हैं ये सारे प्रोटेस्ट जो है ओटावा के अंदर चल रहे हैं और इसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा आपको पता ही है कि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी जो थी ओवर द वीकेंड सिटी में अनाउंस की गई थी ओटावा में और यहां पे जो स्पोक्स पर्सन है अब ट्रकर्स के वो कह रहे हैं जी अब हम एक कोलिशन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन के साथ और गवर्नर जनरल ऑफ कैनेडा को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और जो है हम एक यहां पे लोकल होटल है उसके अंदर भी एक रूम जो है उसको बुक करा रहे हैं और हम प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को कह रहे हैं कि हमारे से वहां पे आओ मिलो और हमसे बात करो जबकि ट्रूडो साहब ने कहा कि मैं आपके साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं और बहुत सारे लोग जो हैं ये छट गए हैं यहां से लेकिन फिर भी ओटावा पुलिस सर्विसेज जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी तकरीबन 500 के करीब ट्रकर्स और पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो रेड जोन में है तो रेड जोन का क्या मतलब है कि कोर जो है डाउनटाउन का वहां पे ओटावा में उसके अंदर है लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम काफी ज्यादा अब जो है हमारी लाइफ आपने उतर पुथल कर दी है तो प्लीज इसको हटाओ और ये जो है इस तरह अच्छा जी कनाडा के अंदर जो है ये जो जगमीत सिंह साहब हैं उनका आज एक बहुत मेजर एक आज बयान आया है और वो कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये फॉरेन इंटरफेरेंस है अच्छा अब अलेज्ड फॉरेन इंटरफेरेंस तो अब जगमीत सिंह साहब के पास क्या इंफॉर्मेशन है ये अब इनसे जो है लोग पूछेंगे जाहिर है
जरूर
क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हम ये गवर्नमेंट को वी आर ट्राइंग टू ओवरथ्रो, तो ये फॉरेन इंटरफेरेंस इसमें शायद है और इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और वो कहते हैं मोस्टली इन्होंने कहा है, अगेन इनके वर्ड्स हैं जगमीत सिंह साहब के, कि वो कहते हैं जी कि मुझे लगता है कि ये ज्यादातर लोग जो हैं ये यूएस की तरफ से जो हैं ये आ रहे हैं। और ये कहते हैं जी कि इसके ऊपर मैं एक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट भी करवाऊंगा कि ये जो हैं लोग